नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्तव्य भवन अमृत काल में विकसित भारत की नीतियों व निर्णयों की दिशा करेगा तय। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, लोगों को गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध व आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों पर FIR दर्ज करने को भाजपा ने बताया शर्मनाक। राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को दी मंजूरी। और प्रदेश में लगातार हो रही मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित, किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कर्तव्य भवन अमृत काल में विकसित भारत की नीतियों और निर्णयों की दिशा तय करेगा।
ये कर्तव्य भवन ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ एक ओर भारत मंडपम का निर्माण किया गया है, वहीं देश भर में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने 90 नए हवाई अड्डों में भी नजर आती है। प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण में श्रमिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी सराहना भी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1000 नई बसों को चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 24 नई वॉल्वो बसें HRTC के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी व सुविधाजनक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं सुगमता से प्रदान की जा सके। इसके अलावा 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में निगम द्वारा लगभग 3200 बसों का संचालन किया जा रहा है। मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावितों पर FIR दर्ज करने के विरोध में मंडी जिला भाजपा ने आज राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के बजाय उन पर झूठी FIR दर्ज की है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा करती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी वर्षा से करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने बजट प्रावधान न के बराबर किया है। बाद में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सराज क्षेत्र के लोगों पर दर्ज गई FIR को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई। हिमाचल में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी हाईकमान ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में शामिल होने के बाद शिमला लौटे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पार्टी हाईकमान ने राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।
दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पांच मिनिस्टर्स जो थे, से राहुल गांधी जी उसमें उपस्थित रहे हैं। मेन फोकस तो उसमें हमारा संगठन को लेकर के था, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड भी चिंतित है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है वो पिछले 8 महीने से नहीं है, और रजनी पाटिल जी ने विस्तृत रूप से सारी जानकारी जो है कांग्रेस हाईकमांड को दी। कांग्रेस हाईकमांड ने भी इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है कि जल्द जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कांग्रेस हाईकमांड पे वो करेगा।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिए, ना ही उससे भोजन पकाएं और ना ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें।
साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाएं, गाड़ी चलाने से बचें।
अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें।
सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो।
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी।
अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता पिता से वंचित आवेदकों और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए 5% कोटे में एक मुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को समय पर सहायता प्राप्त करना और चिर लंबित मांगों का समाधान करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लूज फास्ट टैग का पता लगाने और उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार द्वारा संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी। नितिन गडकरी ने बताया कि जिन वाहनों में वैध और कार्यात्मक फास्ट टैग नहीं लगा है उनसे लागू शुल्क का 2x शुल्क वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगा है वे भी इसी श्रेणी में आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार फास्ट टैग परितंत्र के विस्तार के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी रहने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में भारी वर्षा व भूस्खलन के चलते 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 533 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई लगातार बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा पर गए सैकड़ों श्रद्धालुओं को कांगेरंग से रस्सी के अस्थायी पुल के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया। प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जिनमें से 1 श्रद्धालु की पहचान पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है, जबकि 1 अन्य श्रद्धालु की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं के कारण अब तक 199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 36 अभी भी लापता है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। राज्य दृष्टिहीन संगठन ने राज्य सरकार से बैकलॉग कोटे की भर्तियों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। दृष्टिहीन संगठन के सदस्यों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगामी मॉनसून सत्र से पहले बैकलॉग कोटे की भर्तियों पर फैसला नहीं लिया गया तो 19 अगस्त को वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दृष्टिहीन जन संगठन के सदस्य पंकज ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार और अधिकारियों के साथ मांगों को लेकर बैठकें की गई लेकिन अभी तक बैकलॉग कोटे की भर्तियां नहीं हुई हैं।
मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब ये ठगने और ठगाने का खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। 19 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, 19 तारीख को अगर ये हमारा मुद्दा कोई विधानसभा में उठाते हैं और प्रदेश सरकार उसका कोई सकारात्मक उत्तर देती है तो वो करे। अगर ये नहीं होता हमारा सबसे पहले शुरू हो जाएगा आमरण अनशन, उसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। और मेरे कुछ साथी तो ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो हम विधानसभा के बाहर आत्मदाह कर लेंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्तव्य भवन अमृतकाल में विकसित भारत की नीतियों व निर्णयों की दिशा करेगा तय। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, लोगों को गुणवत्तायुक्त समयबद्ध व आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों पर FIR दर्ज करने को भाजपा ने बताया शर्मनाक। राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को दी मंजूरी। और प्रदेश में लगातार हो रही मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित, किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9 बजे। नमस्कार।